दिन भर 27 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का चुनाव संपन्न, करीब 57% लोगों ने वोट डाले। क्या कहते हैं अमेठी के मतदाता?
हमारे लिए दोनों रानियां सही हैं, कोनो खराब नहीं है। राजा भी सही है, दोनों रानियां भी सही हैं।
रानी तो रानी भैया, रानी के अलावा दूसरा तो देवर ना जाएगा।
ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा के दौरान लाला लैंड को गलती से सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, बाद में गलती सुधारी गई।
We lost by the way, but you know. Guys,
I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश में आज कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच पांचवें चरण के लिए 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान हुआ। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के प्रमुख टी वेंकटेश ने कहा है कि शाम 5 बजे तक करीब 57% वोट डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। इस चरण के चुनाव में अमेठी और सुल्तानपुर की सीटों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा की निंदा को लेकर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में आई दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर ने आज दिल्ली महिला आयोग से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उन्हें बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली के रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम के विरोध को लेकर छात्रों के साथ मारपीट की गई थी और इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस मसले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा है कि राष्ट्र विरोधी नारों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहा जा सकता है। आज गुरमेहर कौर ने अपने कॉलेज के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा।
First things first, I really want to make the people out there, very famous people, calling me.
मैं उन मशहूर लोगों से कहना चाहती हूँ, ये वो लोग हैं जो मुझे देश विरोधी कह रहे हैं। मैं ये उनसे कहती हूँ कि वो देशभक्ति नहीं समझते हैं। इस अभियान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कॉलेज परिसर सुरक्षित होने चाहिए, चाहे कोई भी दल हो, धमकियां नहीं बर्दाश्त की जा सकती। ये थी गुरमेहर कौर। हालांकि गुरमेहर कौर के बचाव में विपक्षी दल आ गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर गुरमेहर का पीछा करने वालों की निंदा की है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड के लिए मतदान की निगरानी करने वाली कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गलत फिल्म का नाम लिए जाने पर माफी मांगी है। प्राइस वाटर कूपर्स ने कहा है कि अवार्ड की घोषणा करने वालों को गलत लिफाफा दिया गया था। कंपनी का कहना है कि ये गलती क्यों हुई, इसके बारे में जांच चल रही है। ऑस्कर अवार्ड समारोह में अंग्रेजी फिल्म लाला लैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मूनलाइट को दिया जाता है। फिल्म लाला लैंड की टीम ने फिर ये अवार्ड मूनलाइट में काम कर चुके कलाकारों को सौंप दिया। ऑस्कर में लघु फिल्मों की श्रेणी में विजयी रही डॉक्यूमेंट्री सीरिया के में काम कर रही संस्था व्हाइट हेलमेट्स पर आधारित है, लेकिन इससे जुड़े एक कैमरामैन को पिछले दिनों यात्रा प्रतिबंध की वजह से अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। व्हाइट हेलमेट्स के तुर्की में प्रवक्ता रहे आबेद अब्दुल रहमान का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं को इस अवार्ड के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता खुश हैं, लेकिन अभी भी सीरिया में युद्ध जारी है, इस बात को लेकर वो चिंतित हैं। हमारा संदेश शुरू से यही रहा है कि सीरिया काफ़ी ख़तरे में है। हम तो शांति की बात करते हैं और दुर्भाग्य ये है कि ये सिर्फ एक मानवाधिकार की बात की गई है, लेकिन राजनीतिक और सैनिक और लड़ाई के बारे में सभी कोई जानते हैं। हम अब भी ये कहना चाहते हैं कि सीरिया में बमबारी की वजह से लोगों का जीवन खतरे में है। ये थे आबेद अब्दुल रहमान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराकी सेना ने मोसुल में दजला नदी पर बने एक पुल को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। मोसुल को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए इराकी सेना ने लड़ाई छेड़ी है। सेना अब मोसुल के पश्चिमी इलाके में जोसेक पर भी नियंत्रण कर चुकी है। इसके बाद दजला नदी पर बने पुल के दोनों तरफ इराकी सेना का नियंत्रण है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पांचवें चरण का मतदान हुआ। 11 जिलों की 51 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। करीब 57% मतदान की खबरें हैं। कुछ एक घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। हालांकि जगह जगह से ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायतें सुबह से ही आने लगी। चुनाव कवरेज पर निकले हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र आज अमेठी में थे, वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
अमेठी जिले के रामनगर मतदान केंद्र पर सुबह 6 बजे से ही सुरक्षा के लंबे चौड़े इंतजाम बता रहे थे कि यहाँ कुछ खास है। और खास ये था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की उम्मीदवारों को इसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डालना था। पहले कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह अपने पति और कांग्रेस नेता संजय सिंह के साथ सुबह करीब 8 बजे आईं और उसके बाद बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ आईं। दरअसल गरिमा सिंह संजय सिंह की पहली पत्नी है। गरिमा सिंह ने बीबीसी से खास बातचीत में चुनावी मैदान में उतरने की ये वजह बताई।
इसलिए भी है क्योंकि ये समाज की लड़ाई है, समाज की मान्यताओं की लड़ाई है। हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ में जो है मेरा अपना भी कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये मैं क्षेत्र में भी आई हूँ। तो ये दोनों ही तरह की लड़ाई है और जनता इसका फैसला करेगी।
हालांकि संजय सिंह का कहना था कि उनके परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं है।
परिवार में कोई फाइट नहीं है, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे के बीच में हमसे कोई नहीं लड़ रहा है, हमारी पत्नी रानी अमिता सिंह।
ये बात जरूर है कि ये दोनों उम्मीदवार मतदान से पहले करीब 200 मीटर दूर स्थित सूफी संत और कवि मलिक मोहम्मद जायसी की मजार पर जाना नहीं भूले। बहरहाल मतदान के लिए यहाँ सुबह से ही लंबी कतार लग गई और फिर मतदाताओं ने ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत की।
मशीन क्यों खराब हो गया है? इतना नंबर वही देखे ना हम, तो खराब बता होती है।
वहीं लाइन में खड़ी कुछ युवा मतदाताओं में चुनाव के मुद्दों को लेकर बहुत साफ राय नहीं थी, लेकिन वोट डालने का क्रेज जबरदस्त था।
अभी तो पहली बार डाले, थोड़ा नर्वस है, पता नहीं था
डिसाइड। अभी केवल वोट डाल रहा है,
अब पहली बार है, अभी पता नहीं है, देखते हैं।
अब जो सोचे होंगे अंदर पता लग जाएगा।
नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहे आप किसको वोट दे रही है, मतलब क्या यहाँ पे मुद्दे क्या है?
अब हमारे लिए दोनों रानी सही है, कोनो खराब नहीं है। राजा भी सही है, दोनों रानियां भी सही है।
रानी तो रानी भैया, रानी के अलावा दूसरा तो देवे ना जाएगा।
अभी तो इलेक्शन है, चुनाव हट है, जो नियम बना बट है हर 5 साल के लिए चुनाव हुए का, वो तो होवे करे, जहाँ विकास हुए और जहाँ ना हुए।
अमेठी सीट से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और मंत्री गायत्री प्रजापति भी ताल ठोक रहे हैं। गायत्री इस समय इसी सीट से विधायक भी हैं। रामनगर से कुछ ही दूरी पर एक गांव परसौली में करीब 2000 मतदाताओं ने इसलिए वोट नहीं डाले क्योंकि उनके गाँव की सड़क बार बार गुजारिश के बावजूद आज तक नहीं बन पाई है। अमेठी के अलावा आज फैजाबाद, अयोध्या, बहराइच जिलों में भी मतदान हुआ। कुछ जगहों से हिंसा की भी खबरें मिली। फैजाबाद में मंत्री और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के वाहन पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पांचवें चरण में कुल 617 उम्मीदवार मैदान में हैं और मौजूदा समय में ज्यादातर सीटें सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के पास हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी अमेठी।
अमेठी में जहां दूसरे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी थी, वहीं परसौली गांव में अधिकारी इन कोशिशों में लगे थे कि लोग मतदान करने आए। दरअसल इस गांव के मतदाताओं ने इस बार मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया था। उनका आरोप था कि तमाम कोशिशों और आश्वासनों के बावजूद मुख्य मार्ग से उनके गाँव को जोड़ने वाली सड़क आज तक नहीं बन पाई है। लोगों का कहना था कि यहां से राहुल गांधी लंबे समय से सांसद हैं और गायत्री प्रजापति विधायक होने के साथ प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वीआईपी एरिया होने के बाद भी ये इलाका विकास की दौड़ में सबसे पीछे है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र इस गांव में पहुंचे और वहां के लोगों से बात की।
ये अमेठी विधानसभा क्षेत्र परसौली गांव है और यहाँ के लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी क्या
रोड नहीं तो वोट नहीं। हम 25-30 साल से चल रहे हैं, एक साल में हम 3-3 टायर लगवाते हैं रोड पर चलने के लिए। कोई बूढ़ पुरनिया जाता है तो रोड पर गिर जाता है, गिरने के बाद उसकी जो 200 रुपए कमाने वाला आदमी
क्या कह रहे हैं
जी, गर्भवती महिला अगर जाती है कोई परेशानी रास्ते में हो जाए उसकी गारंटी कौन लेगा?
कितने वोटर है यहाँ पे? वोटर कितने हैं?
1200
कोई नहीं डाल रहा है।
तो कब से रोड नहीं है
ये बहुत दिन बहुत 40 साल हमारी पैदाइश नहीं थी जब से रोड मरम्मत भी नहीं हुई है कंकड़ नहीं हम लोग इतने परेशान हैं जिसका रोड नहीं बना
संजय गांधी जी बनवाए थे तब से आज तक रोड नहीं बना है इसमें कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुई ये चुनाव आयोग के लिए आज जो है सड़क रिपेयरिंग की गई है ताकि चुनाव की गाड़ियाँ आ जा सके
इसके पहले कभी आप लोगों ने इसको बनवाने के लिए क्या काम किया है
एप्लीकेशन दिया गया मैं तक पास गया मंत्री हमारे यहाँ गए थे उनके बोले यहाँ से परसोली गाँव से वोट नहीं मिला हमें परसोली गाँव से हमें 62 वोट मिला है वहाँ का विकास नहीं करेंगे हम
किसने मंत्री ने
जी मंत्री जी मंत्री ने कहा था गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा इसमें आए भी थे बोले की वादा करके चले गए
नहीं तो इसके पहले आप कह रहे बहुत देर से आप पैदा हुए तब से रोड नहीं
हाँ जब मेरी पैदाइश नहीं थी तब का रोड बना हुआ मैं जानता रही हूँ अभी तक
रोड है संजय गांधी बनाए थे बताते लोग इसके बाद तब से आज तक रिपेयर भी नहीं हुई हाँ सर
इसके पहले भी कभी बहिष्कार किया गया
है
इसी रोड पे हम लोग गिर चुके सर खराब इतना खराब रोड है सर क्या
नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी इसके पहले भी मतदान का बहिष्कार किया गया
नहीं कभी नहीं और संजय गांधी का बनवाया हुआ रोड था तब से कभी बना नहीं अमिता सिंह 3 बार विधायक रही कभी नहीं बनवाई उन्होंने
उनसे कभी कहा नहीं आप लोगों
ने बहुत बार कहा है हमेशा आती हैं लेकिन जो है रोड कहीं बस आश्वासन झूठा आश्वासन
नहीं तो आप लोग इस बार नहीं कहे कि नहीं बनेगी तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे
नहीं तो बैनर लगा है सामने 2 महीना से 3
अच्छा।
कभी भी उन्होंने इसका चेष्टा नहीं किया जो है बनवाने के लिए
सर हम लोग मतदान करेंगे लेकिन अगर रोड बन जाएगा तो हम लोग 19 में मतदान करेंगे जब से देश आजाद हुआ है तब से हम लोग मतदान करते आए हैं
लेकिन
आज तक नहीं बना
है यहाँ कौन विकास न यहाँ सड़क बनी एक एक जिन्हें बोला यार या हमारी का बोला हो दिया तू तो जिन्हें बोल दिया ना तो हमारे गांव में सड़क बनी एक काम ना हमारे यहाँ गांव का सड़क बनी अंदर का ना नाली बनी ना टट्टी बना ना गुसल खाना बना क्यों बना इस नहीं आज तक साहब यही साहब आपकी हम सब वोट गए
परसौली अमेठी के मतदाताओं से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र उत्तर प्रदेश का धार्मिक नगर अयोध्या अब मंदिर मस्जिद विवाद के लिए साधा जाना जाता है केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के आंदोलन से ही राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंची थी मस्जिद तो टूट चुकी है लेकिन मंदिर अभी तक नहीं बन सका है ये मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है राज्य में हो रहे चुनावों के परिदृश्य में अयोध्या के साधु महंत और आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं बता रहे हैं हमारे साथी शकील अख्तर इस रिपोर्ट में
मंदिरों और अध्यात्म का शहर अयोध्या हर तरफ यहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और पूजा स्थल फैले हुए हैं पिछले 3 दशकों से अयोध्या नगरी अध्यात्म और धर्म से ज्यादा मंदिर मस्जिद विवाद के लिए जानी जाती है शनिधाम मंदिर के महंत स्वामी हरदयाल मिश्र कहते हैं
यहाँ पर मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद था ही नहीं और न विवाद है क्योंकि यहाँ शुरू से जैसे यहाँ सबसे बड़ा जो पीठ है हनुमानगढ़ी वो सिराजुद्दौला का बनाया हुआ है अब आ जाइए लक्ष्मण किला मुसलमान ने दिया है शासक ने यहाँ तो केवल ये जो राजनीतिक लोग हैं इन लोगों ने जानबूझ जो बाहरी तत्व हैं इन लोगों ने जो विवाद जो पैदा कर दिया यह जो है इनका असफल प्रयास रहा हिंदू मुसलमान में लड़ाने का
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 35 वर्ष पूर्व राम मंदिर के आंदोलन से राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंची वह बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई बाबरी मस्जिद टूट चुकी है लेकिन अभी उसके स्थान पर मंदिर नहीं बन सका है राम मंदिर के बड़े पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि राजनीति के आने से ये विवाद जटिल हुआ
जी हाँ इसमें ये राजनीति न घुसी होती केवल धर्म नीति होती केवल पुराण और कुरान के साथ हम हिंदू मुसलमान के बीच में होता तो ये कोर्ट तक जाता ही नहीं आपसी में बैठ करके हम लोग समझौता कर लेते और जो उचित होता उसी रूप में हम लोग उसको समाधान कर लेते अयोध्या में ही कर लेते
अयोध्या के साधुओं और पुजारियों को इस बात पर गर्व है कि अयोध्या बुनियादी तौर पर हिंदुओं का शहर होने के बावजूद सभी के लिए खुला हुआ है महंत गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि सहिष्णुता अयोध्या की परंपरा है
आप यहाँ पर देखो यहाँ पे 6-6 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है बुद्ध के 6-6 वर्षावास के यहाँ प्रमाण मिलते हैं मुस्लिम इस्लामी दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके काफ़ी मज़ार और उस तरह से वो पाए जाते हैं और बरसों से शताब्दियों से लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। अयोध्या में कभी कोई झगड़ा और फसाद नहीं हुआ, न अयोध्या के लोग कभी कोई झगड़ा फसाद किए।
मंदिर का निर्माण यद्यपि बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन उसने इस समय चल रहे चुनाव में इसे मुद्दा नहीं बनाया है। मतदाता भी अब इस विवाद से आगे निकल चुके हैं।
राम मंदिर तो जब बनना होगा बनेगा, लेकिन हमको देश का और प्रदेश का विकास चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वही पारित होगा।
सर मंदिर वंदिर का झमेला ये तो कोर्ट में है, इसको कोर्ट का जो फैसला देगा उसको अपनाना चाहिए। ये सब अपने अपने कुर्सी के लिए करते हैं और क्या।
राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुकदमा अंतिम निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में है। अयोध्या हिंदुओं के देवता भगवान राम से संबंधित है। राजनीति और कानूनी जटिलताएं अपनी जगह, लेकिन यहाँ हर कोई यही चाहता है कि ये टकराव समाप्त हो और अमन और शांति से राम मंदिर निर्माण हो सके। शकील अख्तर, BBC, अयोध्या।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित 89वें अकादमी पुरस्कारों में लाला लैंड को गलती से बेस्ट फिल्म घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में प्रेजेंटर ने अपनी भूल सुधारते हुए मूनलाइट को बेस्ट फिल्म बताया। इस घोषणा के बाद लाला लैंड की पूरी टीम मंच पर पहुंची और दर्शकों को संबोधित करने लगी कि तभी एक प्रतिनिधि ने कहा कि गलती हुई है, मूनलाइट ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये मजाक नहीं है, इन्होंने नाम गलत पर दिया है। BBC संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ विनीत खरे।
ऑस्कर समारोह में शायद पहली बार हुआ था जब स्टेज से गलत फिल्म का नाम सबसे बेहतरीन फिल्म के तौर पर घोषित किया गया। स्टेज पर होस्ट थे वॉरेन बीटी और फे डनवे। उनके हाथ में लाल रंग का एक लिफाफा था। वॉरेन बीटी लिफाफे को देखकर थोड़ा चकित दिखे। उन्होंने फे डनवे की ओर आश्चर्य से देखा, जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कई लोगों को लगा कि वो घोषणा में कुछ ड्रामा जोड़ रहे हैं। अचानक फे डनवे ने लाला लैंड को सबसे बेहतरीन फिल्म घोषित कर दिया। लाला लैंड फिल्म के कलाकारों, प्रोड्यूसर, निर्देशक ने एक दूसरे को बधाइयां दी। वो स्टेज पर आए, वो सभी को धन्यवाद दे ही रहे थे कि स्टेज पर कुछ दूसरे लोग आते दिखाई दिए। शो के प्रोड्यूसर ने बताया कि पुरस्कार दरअसल मूनलाइट फिल्म ने जीता है, जो एक समलैंगिक काले लड़के की कहानी है जो अपने समलैंगिकता से समझौता करने की कोशिश कर रहा है।
Moonlight, Best Picture.
शो के होस्ट जिमी किमल ने स्टेज पर आकर स्थिति साफ की और फिर वॉरेन बीटी ने बताया कि उन्हें गलत लिफाफा पकड़ा दिया गया था।
I want to tell you what happened. I opened the envelope and it said Emma Stone, La La Land.
वॉरेन बीटी कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एमा स्टोन ला ला लैंड लिखा था। तभी मैंने फे की ओर गौर से देखा, मैं मजाक नहीं कर रहा था। अकाउंटेंसी कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर ने इस गड़बड़ी के लिए माफी मांगी है। उधर इस कार्यक्रम के दौरान होस्ट जिमी किमेल ने बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुटकी ली। जिमी किमेल कह रहे थे, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, आपकी पोशाक बहुत अच्छी है, क्या ये इवानका जैसी है? आप में से कुछ लोग यहाँ स्टेज पर आएंगे और भाषण देंगे ताकि अमरीका के राष्ट्रपति जब 5 बजे बाथरूम में हों तो वो बड़े बड़े अक्षरों में ट्वीट करें, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पिछले साल याद है ऐसा लगा कि ऑस्कर नस्लवादी हैं। ये थे जिमी किमेल। ईरान की फिल्म द सेल्समैन को सबसे बेहतरीन विदेशी फिल्म घोषित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक असगर फरहादी ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित अमेरिका आने पर लगे नए प्रतिबंध के कारण ऑस्कर समारोह का बहिष्कार किया था। अनुशेह अंसारी ने उनकी अनुपस्थिति में असगर फरहादी का वक्तव्य पढ़ा। मेरी अनुपस्थिति मेरे देश के लोगों के लिए सम्मान की वजह से है और 6 अन्य देशों के लिए है जिनके अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई है। ये अमानवीय कानून है। ये था अशकर फरहादी का वक्तव्य। लाला लैंड इस समारोह की सबसे कामयाब फिल्म रही। उसने 6 ऑस्कर जीते। लाला लैंड के लिए एमा स्टोन को सबसे बेहतरीन महिला कलाकार का ऑस्कर मिला। कम बजट वाली मूनलाइट ने 3 ऑस्कर जीते जिनमें एडेप्टेड स्क्रीन प्ले और महर्षला अली को बेहतरीन सहायक कलाकार का ऑस्कर मिला। लाला लैंड के 32 साल के निर्देशक डेमियन शाज़ेल सबसे कम उम्र में ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति बने। मैनचेस्टर बाय द सी के लिए कैसे एफ्लिक को सबसे बेहतरीन पुरुष कलाकार का ऑस्कर मिला। मैनचेस्टर बाय द सी के लिए ही केनेथ लोनरगान को सबसे बेहतरीन पटकथा का ऑस्कर मिला। सबसे बेहतरीन संगीत का ऑस्कर गया लाला लैंड के लिए ही जस्टिन हर्विट्स को।
ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
खबरें मिल रही हैं कि केरल से आईएस के लिए काम करने के लिए चुने गए हफीजुद्दीन की अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमले में मौत हो गई है, लेकिन उनके एक परिवार वाले का कहना है कि इससे उन्हें कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ है। हफीजुद्दीन उन 21 लोगों में शामिल थे जो पिछली जुलाई से केरल से लापता हो गए थे और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने आईएस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। परिवार को उनकी मौत के बारे में कल पता चला जब उनके एक दोस्त ने उन्हें संदेश भेजा कि उनकी मौत हो चुकी है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले साल 5 जुलाई को जब हफीजुद्दीन रमजान के ईद के लिए घर नहीं पहुंचे और उनकी माँ को सिर्फ एक SMS भेजा, तब से उनका परिवार बहुत ही परेशान था। वो इसलिए क्योंकि 2 महीनों से हफीजुद्दीन लापता थे। जब उनका SMS पहुंचा तो उनकी माँ बीमार हो गई थी अपने बेटे की फिक्र करते हुए। तो कल जब उनके करीबी रिश्तेदार BC रहमान को टेलीग्राम ऐप के जरिए संदेश मिला कि हफीजुद्दीन एक ड्रोन हमले में गुजर चुके हैं, तो खानदान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। BC रहमान ने BBC को बताया,
एक्चुअली लास्ट 6 months देयर फैमिलीज आल्सो बी वेरी पेनफुल कंडीशन।
पिछले 6-7 महीनों से हमारा परिवार बहुत ही दर्दनाक गुजारा किया है। हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि हमें संदेह था कि किसी न किसी दिन हमें इस तरह की खबर मिलेगी ही। ये थे बीसी रहमान के शब्द। रहमान को यह खबर अशफाक मजीद ने भेजी, ये कहते हुए कि हफीज शहीद हो गए हैं। रहमान ने मजीद के साथ टेलीग्राम ऐप के जरिए एक ध्वनि संदेश भी भेजी, लेकिन सिर्फ लिखित रूप से उनको जवाब मिला। रहमान कहते हैं,
I got the telegram message to Ashfaq. He was sent the message to me. Hafizuddin was dead on the...
हमें मजीद के संदेश से ये पता चला कि एक ड्रोन के हमले में हफीज की मौत हो गई। हमने उसको कहा कि हफीज के शव को यहाँ भेज देना चाहिए था और हम हमारे सरकार की मदद लेकर यहाँ दफन करवा सकते थे। उसने जवाब दिया कि उसका दफन वहीं कर दिया गया। ये थे बीसी रहमान के शब्द। मजीद वही हैं जो उन 21 लोगों के साथ लापता हो गए थे, लेकिन रहमान को अभी भी उस बात का आश्चर्य हो रहा है कि पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के अफसरों को अभी भी ये पता नहीं चला है कि ये 21 लोग किस देश चले गए। रहमान ने यह भी कहा कि मजीद का संदेश भारत देश के मोबाइल नंबर से भेजा गया था। जब NIA ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिला की थी तो उसमें कहा गया था कि उनको संदेह है कि वो अफगानिस्तान में हैं। इस उदास कहानी में सिर्फ एक ही अच्छी खबर है कि हफीजुद्दीन जाने से पहले उनकी पढ़ी लिखी पत्नी को तलाक देकर चले गए थे। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं संदीप सोनी और राजेश प्रियदर्शी।
आपकी राय आपकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं संदीप सोनी और मेरे साथ हैं राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार।
और आज सबसे पहला पत्र जो आया है ईमेल के जरिए वो है अविनाश शाही साबरमती हॉस्टल JNU दिल्ली से। अविनाश लिखते हैं कि बंशीधर बौद्ध पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट इन्हें पसंद आई जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के बावजूद झोपड़ी में बिना किसी तामझाम के रहते हैं। और ये लिखते हैं कि बंशीधर जैसे उदाहरण जो हैं वो लोकतंत्र को सर्वोत्तम राजनीतिक तंत्र बना देते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई। वाकई ये ऐसी रिपोर्ट थी जो कि अब ऐसे लोगों के बारे में बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है जो सादगी से अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ख़ास तौर पर एक मंत्री होने के बावजूद। और आप हमें पत्र लिखा आपने हमें, इसके लिए आपका शुक्रिया।
अनिल शुक्ला, विनीत कश्यप, राजेश राजावत, नई मंसारी और आज़म अली सुमरो, ये बीबीसी के वो तमाम श्रोता हैं, पाठक हैं, जिन्होंने राजेश जोशी और ज़ुबैर अहमद के नाम चिट्ठियां लिखी हैं। इनमें से कुछ को तारिक फ़तेह से दो टूक सवाल जवाब का अंदाज़ काफ़ी पसंद आया, जबकि कुछ को लगता है कि बीबीसी ने तारिक फ़तेह को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया।
ये बहुत ही दिलचस्प बात है, तारिक फ़तेह हों एक सिरे पर और दूसरी तरफ अगर ज़ाकिर नाइक हों, दोनों में से कोई भी हो, हम उनसे इसी तरह से सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो मंच है बीबीसी का जहां वो बात कर रहे थे, वो उनके भाषण देने के लिए नहीं था। हम उनसे सवालों के जवाब आपके बिहाफ में, आपकी तरफ से, आप जैसे जो श्रोता पाठक दर्शक हैं उनकी तरफ से पूछना चाहते हैं, और ये सवाल बहुत सारे होते हैं। तो हमें जब भी ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति उस मंच का इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है और जो लोग उनसे जानना चाहते हैं वो नहीं बता रहा, तो हमें लगातार कई सवाल पूछने पड़ते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है, और ये हम सबके साथ करते हैं, चाहे वो तारिक फ़तेह हों या अगर ये इंटरव्यू ज़ाकिर नाइक के साथ हुआ होता तो भी ऐसे ही होता। आप याद करिए, हमने जब असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू किया था तब भी ऐसे ही किया था, और अगर हम किसी और का भी इंटरव्यू करेंगे तो ऐसे ही करेंगे।
और राजेश जी, अगली चिट्ठी बड़ी ख़ास है, ख़ास इसलिए कि बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखी गई है, और लिखने वाले हैं पूर्णिया बिहार से डॉक्टर अनिल कुमार। ये लिखते हैं कि जो ना करे सरकार वो करे पत्रकार, और संदर्भ है इनका विनीत खरे की उस रिपोर्ट का जिसकी वजह से भारत में फंसा चीनी नागरिक अपने वतन वापस जा पाया। लिखते हैं कि खरे साहब को इतनी उम्दा रिपोर्टिंग के लिए धन्यवाद।
विनीत खरे ने वाकई इस रिपोर्ट के लिए बहुत मेहनत की, वो वांगशी के गांव गए, उन्होंने बहुत समय लगाकर और बहुत गहराई से पूरी रिसर्च की, और जिस तरह से उन्होंने वांगशी का जो पूरा मामला है उनके चीन तक जाने का, उसको फॉलोअप किया, हमने लगातार उसकी रिपोर्टिंग की, और हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि ये वाकई हो पाया 54 साल बाद जब वो जा पाए। और हमने एक पत्रकार के तौर पर और एक प्रसारण संस्था के तौर पर एक ऐसा काम किया, एक ऐसे व्यक्ति को लोगों के सामने लाए जिसे दुनिया एक तरह से भुला चुकी थी।
और राजेश जी, ऐसा तो कभी होता नहीं है कि विवेचना की तारीफ में खत ना आए। रत्नेश कुमार पटवा बीएचयू से, आसिफ करीम ईरान से, कपिल बत्रा बहरीन से, और सौरभ कुमार शाक्य कासगंज उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, इन सभी हमारे इन सभी श्रोताओं को वीरप्पन पर रेहान फजल की विवेचना बहुत बहुत पसंद आई।
बिल्कुल, और कई लोगों ने तो ये तक लिखा और ये कहा कि उस विवेचना को सुनते हुए या उसके बारे में जो रिपोर्ट थी उसको पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों। बात बिल्कुल सही है, रेहान ने उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिरोया है, उस पूरी कहानी को, और उसमें सभी तथ्य हैं, और वो पूरा रोमांच है, और वो पूरी जानकारियां हैं जो वीरप्पन के बारे में इस तरह से इतने रोचक तरीके से पहले सुनने और पढ़ने को नहीं मिली थी। तो इसलिए आपकी ये जो तारीफ है हम रेहान साहब तक पहुंचा देंगे।
तो चिट्ठियों में आज बस इतना ही, पता आप बताएंगे?
जी बिल्कुल, पता है, अगर आप डाक से चिट्ठी लिखना चाहें तो बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में आज कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच पांचवें चरण के लिए 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक करीब 57% वोट डाले गए हैं। दिल्ली के रामजस कॉलेज में हिंसा की निंदा को लेकर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में आई दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर ने दिल्ली महिला आयोग से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उन्हें बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गजा पट्टी पर कट्टरपंथियों के कई ठिकानों पर बमबारी की है। ये ठिकाने हमास से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसराइल का दावा है कि गजा से रॉकेट दागे गए जिसके जवाब में ये बमबारी की गई है। अमरीका में ऑस्कर अवार्ड में बैलेट की निगरानी करने वाली कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गलत फिल्म का नाम लिए जाने पर माफी मांगी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।